मेन मसला ये है कि वहां कोई रिकग्नाइज हुकूमत नहीं है, और
जी
लेकिन ईरान और जो अरब कंट्रीज हैं जीसीसी की हैं, जो इस्लामिक जो कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है वहां और यूएन के अंदर भी इस मामले को पाकिस्तान को अग्रेसिवली उठा के और जो किरदार हमारे मुल्क की तरफ से हो सके हम इस रीजन की स्टेबिलिटी के अंदर अदा करें, क्योंकि यमन के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट को लंबा करना और कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जाना, कई लोगों के मुताबिक यमन एक दूसरा अफगानिस्तान भी इस रीजन का साबित हो सकता है। तो हमारा तो यही इंटेंशन है और होनी चाहिए कि पाकिस्तान इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी लेके आए।
इस रीजन में स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, क्या पाकिस्तान क्या आपकी नजर में किरदार जो है अदा कर सकता है?
देखिए जी, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर तो बहुत ही क्लियर वर्ल्ड रिकग्नाइज किरदार अदा कर रहा है। ईरान की P5+1 जो जी ममालिक के साथ एक अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्टेड है इन द नियर फ्यूचर, जिसकी तरफ काफी अग्रेसिवली काम हो रहा है, उसके बाद इस खत्ते के अंदर क्या हालात होंगे, सऊदी अरेबिया को क्या इनसिक्योरिटीज हैं, सऊदी अरेबिया और कुछ और जो जीसीसी की कंट्रीज को इनसिक्योरिटीज हैं, सीरिया के मामले में है और ममालिक के मामले में है, तो दोनों साइड्स की इनसिक्योरिटीज को देख के हमें इस रीजन के अंदर, और ये मामला बहुत ही पुराना है, ये मामला कई कई जी डेकेड्स पुराना है, तो पाकिस्तान को इस बहुत पुराने मामले के अंदर अगर कोई भी रोल अदा जी कर सके पाकिस्तान को जी करना चाहिए।
ठीक, ओके लगारी साहब, ये आपसे जानना चाहूँगी, ये तो हम सबको मालूम है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने टेलीफोन पे सऊदी जो बादशाह हैं सुलेमान, उनको मदद का उन्होंने यकीन दहानी करवाई है, ये इसका क्या ये मतलब नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं यकतरफा तौर पर सऊदी अरब की मदद करने का वो फैसला कर चुके हैं?
देखिए जी, वज़ीर आज़म साहब को कंप्लीट एक जी ओनरशिप है पाकिस्तान की स्टेट के मामलात को जी चलाने की, हुकूमत पाकिस्तान के वो हेड हैं, उनको पाकिस्तान की आवाम ने जी सिलेक्ट किया है और जी इलेक्ट किया है, और यहाँ तमाम हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुलाकातें, उनके साथ डिस्कशंस, उनकी जी एडवाइस लेने के बाद जो भी वजीर आजम का।
लेकिन अवेज़ खान लगारी साहब, अगर हम देखें यहाँ पे एक सवाल, अवेज़ खान लगारी साहब, अगर हम देखें तो सऊदी अरब की तरफ पाकिस्तान में बादशाहत का निज़ाम नहीं है और ना ही नवाज शरीफ साहब बादशाह हैं, बल्कि वो जिस तरह आपने कहा कि वो एक इलेक्टेड वजीर आजम है, मुल्क में पार्लियामेंट मौजूद है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, पार्लियामेंट में जो मौजूद सियासी जमातें हैं वो कहाँ तक आप लोगों के साथ है, क्या उनके सामने आपने इस फैसले इशू को रखा है, और फौज जो है वो कहां तक आप लोगों के साथ है?
जी, अब पार्लियामान के अंदर मुकम्मल यूनैनिमस डिसीशन आना और एक इतफाकी राय पैदा करना सबसे आइडियल सिचुएशन होती है जी, नंबर वन। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान की आवाम ने इस हकूमत को एक जी मेजोरिटी के जरिए जी इलेक्ट किया है, जो भी जी मेजोरिटी का फैसला होता है जमहूरियत के अंदर उसी को आगे लेके जाया जाता है और उसी को फिर अगले इलेक्शंस के अंदर परखा जाता है। नंबर वन, एक तो इस वक्त तक हुकूमत पाकिस्तान ने कोई फैसला किया ही नहीं है। हमने ये फैसला जरूर किया है कि हम यमन के अंदर किसी अग्रेशन का हिस्सा नहीं लेंगे। सऊदी अरब की हम एक हमारा दोस्त मुल्क है, मुश्किल वक्त के अंदर हमारी जी मदद करता रह गया है, हमने उनको इस बात का इंदिया जरूर दिया है कि अगर आपको कोई इनसिक्योरिटी होगी, आपके मुल्क के अंदर कुछ हो रहा होगा, तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन वो जी मदद किस नौयत की होगी, किस बुनियाद के ऊपर होगी, इसीलिए हमारी टीम अभी जा रही है, अभी तक नंबर वन फैसला नहीं हुआ। लेकिन अगर फैसला हो भी जाए और ये पार्लियामान के अंदर आएगा, पार्लियामान के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन जरूर होगी, लेकिन ऐसी भी जमहूरियत के अंदर हालात होते हैं जहाँ 100% सियासी जमातें पार्लियामान के अंदर बैठी हुई अग्री किसी चीज के ऊपर नहीं करती, जो भी जी मेजोरिटी का फैसला होता है जमहूरियत की रूह से उसी को आगे लेके जाना पड़ता है।
ओके, ठीक, अब आते हैं मैसूर जो पाकिस्तानी हैं इस वक्त यमन में, तो उस हवाले से आप हमें अपडेट करें कि कितने लोगों को यमन से निकाला गया है।
जी, हमें इस वक्त ये बात करने में बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हम अक्सर पाकिस्तानी जो हमारे भाई हैं और बहनें हैं उन तक यमन के अंदर उन तक हमारी रसाई बहुत हद तक हो चुकी हुई है और बहुत अग्रेसिवली हमने बाकी इस रीजन के ममालिक से ज्यादा अग्रेसिवली और ज्यादा बेहतर अंदाज में उनकी वहां से جو ایویکویشن تھی اس کا اندر کردار ادا حکومت کر چکی ہے. کچھ جو بہت کم لوگ وہاں ہیں اس وقت جو ابھی تک یمن میں موجود ہیں, جو جی لوجسٹکلی ابھی تک باہر نہیں آ سک رہے, ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں اور وہ غالباً کچھ فیصد سے زیادہ نہیں ہوں گے. ایک میجورٹی پاکستانی کی اس وقت سیفلی ایویکویشن کے یا پروسیس میں ہے یا ہو چکی ہوئی ہے.
جی, اور سر یہ عدن سے آج جو میسور پاکستانی ہیں انہوں نے وزیراعظم صاحب کی مدد مانگی ہے, تو اس حوالے سے کچھ ہے آپ کے پاس اطلاع کے کچھ مدد کر رہے ہیں؟
بہت اچھا ہے جی, وزیراعظم صاحب کو ہی ان کو اپیل کرنا چاہیے, حکومت کو ہی کرنا چاہیے. اور اس قسم کے معاملات کے اندر, اس قسم کے حالات کے اندر کچھ ہوتے ہیں لوگ جو رہ گئے ہوتے ہیں, جو مدد مانگ رہے ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی مدد بھی کر سکیں انشاءاللہ.
ٹھیک,
اور کر سکیں گے.
اوکے, بہت شکریہ آپ کا ونس اگین اویس خان لغاری صاحب ٹائم دینے کا. تھینک یو, تھینک یو, اللہ حافظ. جی سامین, یہ تھے اویس خان لغاری صاحب, پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں امور خارجہ کی کمیٹی کے چیئرمین, جو ہمیں بتا رہے تھے کہ یمن میں اگر پاکستان کوئی کردار ادا کرتا ہے یمن بحران سے نمٹنے کے لیے, تو وہ کس نوعیت کا وہ کردار ہوگا, کس نیچر کا ہوگا. اس وقت پاکستان سے ہمارے ساتھ مشتاق احمد مہر صاحب ہے, اور لندن سے ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر امجد ملک صاحب نے. دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور مشتاق صاحب, آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے یمن آپریشن میں حصہ لینا یا نہ لینا جو ہے یہ ایک مشکل فیصلہ ہے, کیونکہ ایک طرف ہمسایہ ملک ایران ہے جس نے سب سے پہلے پاکستان کی جو آزاد حیثیت ہے اس کو تسلیم کیا تھا, دوسری جن طرف اگر ہم دیکھیں تو سعودیہ عرب ہے, جس طرح لغاری صاحب نے کہا کہ ہر مشکل میں پاکستان کا کام آنے والا یہ ملک ہے. تو یہ بتائیے کہ پاکستان جو ہے اس کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں موجودہ صورتحال میں, کیا کردار وہ ادا کر سکتا ہے؟
جی, بنیادی طور پہ آپشن تو یہ ہے کہ پاکستان بڑی حد تک اس کانفلکٹ میں نیوٹرل رہے, اس لیے کہ یمن پہ حملہ ہوا ہے اور سعودی عربیہ نے حملہ کیا ہے اور وہ سعودیز اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. یہ یمن کے اندر انٹرنل اسٹرائف ہے, ٹرائبل اسٹرائف ہے, سیکٹیرین اسٹرائف ہے. یمن پہ کسی باہر کے ملک نے, جیسے کویت عراق نے حملہ کیا تھا وہ نہیں ہوا, یا عراق پہ امریکہ نے حملہ کیا تھا وہ نہیں ہے, سچویشن ڈفرینٹ ہے. تو کسی عرب ملک کے انٹرنل ٹرمائل میں پاکستان کی آرم فورسز کا جانا, میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوگی, فیوٹائل ہوگا, اور یہ یونائٹیڈ نیشن کے چارٹر کی بھی خلاف ورزی ہوگی اور جو ہماری اپنی کانسٹیٹیوشن ہے اس کے بھی خلاف ہوگا. لیکن جیسے کہ آپ نے انٹروڈکشن میں کہا ہے, سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, بڑے دیرینہ تعلقات ہیں, اور سعودی عربیہ اگر کوئی ٹیکنیکل اسسٹنس ہم سے مانگتے ہیں تو وہ ہم دیں گے فار دی ڈیفینس آف سعودی عربیہ. لیکن جو اس وقت کروشل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ کو اپنے انٹرنل ڈیفینس کے لیے ہماری امداد کی ضرورت نہیں ہے. اور میں سعودی عربیہ میں رہا ہوں, میں عرب ورلڈ میں رہا ہوں, کوئی بھی عرب ملک نہیں چاہے گا کہ ان کی انٹرنل سیکیورٹی کے لیے کوئی نان عرب کنٹری آئے. وہ ایجپشن کو انوائٹ کر لیں گے, وہ کسی اور کو کریں گے, ترکی اور پاکستان کو, ایران کو کبھی نہیں کریں گے. نان عرب سیکیورٹی فورسز کو انٹرنل سیکیورٹی کے لیے وہ کبھی نہیں استعمال کریں گے. تو یہ مین جھگڑا ہے. ہم ایز اے بفر پاور جا سکتے ہیں, ہم ان کو مارل سپورٹ دے سکتے ہیں, ہم ڈپلومیٹک سپورٹ دے سکتے ہیں, ہم اشور کر سکتے ہیں کہ آپ کی ٹیریٹوریل سوورینٹی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت مقدس ہے کیونکہ ہمارا رشتہ ہے. لیکن ابھی مجھے حالات سے یوں لگتا ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ہماری گورنمنٹ ہے, وہ سعودی عربیہ کے اندر تھوڑی سی اگریسونیس شو کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کے اندر جیسے لابیز ہیں انہوں نے شور مچانا شروع کیا ہے, میڈیا نے شور مچانا شروع کیا ہے. تو حکومت پاکستان اپنا منڈیٹ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے, جیسے لغاری صاحب نے فرمایا ہے کہ جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ فالو کیے جاتے ہیں, اور نیشنل انٹرسٹ صرف گورنمنٹ ان پاور ہی ڈیفائن کر سکتی ہے, وہی اس کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک حتمی فیصلہ کریں گے, اور وہی ایک قانون کے لحاظ سے, کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے, انٹرنیشنل پریکٹس کے لحاظ سے انہی کا فیصلہ جو ہوگا وہ صادر ہوگا.
जी, तो आप क्या समझते हैं फौज जो है वो इस फैसले में वजीर आजम साहब का साथ देंगी?
जी मैं समझता हूँ पाकिस्तान की फौज 100% सपोर्ट करेगी सऊदी अरेबिया में जाने को, इसलिए कि वो पहले भी वहाँ पे कई दफा गए हैं, कुवैत में हमने पार्टिसिपेट किया है। ये पाकिस्तान फौज की प्रिंसिपल पोजीशन है कि जब कभी वो रीजनल कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट होता है, अयूब खान के जमाने में ये हमारी पोजीशन थी कि अगर ईरान में कोई डिफिकल्टी हुई और शाह ईरान ने हमसे ट्रुप्स मांगे तो हम भेजेंगे। अफगानिस्तान में आपने देखा है हमने किस कदर मैसिवली पार्टिसिपेट किया है जबकि रशियन ने अटैक किया था, और सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन में हमने ट्रुप्स रखे थे, कुवैत में हम लोग गए हैं। तो ये एक रीजनल मैटर है जिसमें हमारी फौज जो है वो हुकूमत के डिक्टेटर्स को मानेगी और वो उनको ऑनर करने की कोशिश करेंगे।
सही बताया जा रहा है, बैरिस्टर साहब की लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है। मुश्ताक अहमद मेहर साहब ये बताइए कि अगर पाकिस्तान जो है वो लगारी साहब ने जिस तरह कहा है कि सऊदी अरब की दिफा में अगर वो इस ऑपरेशन में हिस्सा लेता है या वहाँ पर अपनी फौज जो है उसका कुछ हिस्सा तैनात करता है, तो इस फैसले के इस तैनाती के पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उस पर आप क्या असरात देखते हैं?
जी पाकिस्तान के अंदर जो ओपिनियन है वो बिल्कुल डिवाइडेड है, बिल्कुल लोग जो है वो काफी परेशान हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम किसी बड़े सेक्टेरियन या ट्राइबल या वो इंटर अरब कॉन्फ्लिक्ट में चले जाएं। वो इराक की सिचुएशन को समझते हैं, वो लीबिया की सिचुएशन को समझते हैं, वो समझते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, और फिर हमारी अपनी प्लेट में काफी से ज्यादा मसाइल हैं, हमारे के मसाइल हमसे हल नहीं हो रहे। तो ये पब्लिक ओपिनियन है, लेकिन कौमों की जिंदगी में एक टाइम आता है जब आपको क्रूशियल और क्रिटिकल फैसले करने पड़ते हैं, और क्योंकि ये रीजनल प्रॉब्लम है, सऊदी अरेबिया का प्रॉब्लम है, तो मैं समझता हूँ कि ये जब फैसला होगा तो मेजॉरिटी लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, और फैसला ऐसा नहीं होगा कि हम यमन को जाके लिबरेट करवा के वहाँ पे एक नई गवर्नमेंट इंस्टॉल करेंगे। इनका ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान की हुकूमत कभी नहीं फॉलो करेगी, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि अगर ईरान में कोई डिफिकल्टी होती है, अफगानिस्तान में डिफिकल्टी होती है, सऊदी अरेबिया में डिफिकल्टी होती है, तो अगर हमसे कुछ बन पड़ता है, हमसे कुछ मदद हो सकती है, हम कोई टेक्निकल असिस्टेंस दे सकते हैं, हम कोई मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, हम कोई फिजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, तो वो हम करने को तैयार हैं।
ओके बैरिस्टर साहब आपकी जानिब हम आना चाहेंगे, आप क्या समझते हैं एक दरमियाना रास्ता जो है वो पाकिस्तान के लिए क्या हो सकता है ताकि ईरान जो है वो भी नाराज ना हो और दूसरी जानिब सऊदी अरब भी नाराज ना हो?
हाँ, मेरे ख्याल में सबसे अच्छा तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बोल्ड फैसला लिया है कि एक फ्रेंडली कंट्री ने मदद मांगी है जिनके साथ आपके हेरेडिटरी रवाबत हैं, तो उन्होंने उनको जो उनकी दफाई मामलात में जो जरूरत है उसके तहत उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान उनकी मदद करेगा अगर सऊदी अरब को खतरा पड़ता है। तो ये एक बोल्ड डिसीजन है, बेहतर डिसीजन है, लेकिन जहां तक और सबसे बड़ी उसमें बात कि हमारे अपने पाकिस्तानी फंसे हुए थे उन्होंने जो उनको एवैक्यूएशन के लिए, वो अनदर बोल्ड स्टेप है कि कोई भी मेरा ख्याल इस तरह के हालात में प्लेन अपने लैंड नहीं करते, जिस तरह उन्होंने दो प्लेन वहां लैंड करवाए हैं, वहां से एवैक्यूएट करवाया है, 503 कराची उतरे हैं और 393 लोग इस्लामाबाद आए हैं, ये भी एक बहुत अच्छी काविश। जहां तक यमन का मामला है तो यमन को आपको उस तनाजर में देखना पड़ेगा कि जीसीसी के कंट्रीज जो हैं उनकी सपोर्ट से सऊदी अरब एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जिसके आफ्टर मैथ उनकी अपनी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर हो सकते हैं उसके ऊपर उन्होंने एक अपना एक फैसला किया है, और उन्होंने जो उनका रेजीम चेंज की एफर्ट है हुथियंस की तरफ से उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की है, उसमें उन्होंने अगर उसमें मदद मांगते हैं तो शायद पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक रोल ज्यादा होगा रादर देन मिलिट्री। मिलिट्री रोल जो है वो जो भी होगा वो मेरे ख्याल हुथियंस जो उनकी अफवाज है उनको मदद करने का ज्यादातर सऊदी अरब का ही रोल होगा। पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक रोल ज्यादा हो जाएगा क्योंकि अगर सऊदी अरब और ईरान आपस में बात ही नहीं करते तो पाकिस्तान कैन प्ले अ रोल ही कैन फैसिलिटेट कि दोनों में बात हो, दोनों इस यमन के मसले को रीजन बना के आपस में कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट होने से बचाएं और उनको टेबल पे लेके आए, हुथियंस को جو جی سی سی نے بھی کہا ہے کہ وہ واپس اپنی جگہوں پہ جائیں اور جو لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے اس کو رہنے دیں اور ان کے ساتھ کریں بات جو بھی ان کے مسائل ہیں. آپ اگر یہی چیز عراق میں دیکھیں تو آئیسس کے خلاف آپ کے سامنے پوری دنیا اٹھنی کھڑی ہوئی. سو اگر آپ اس طرح کا رجیم چینج کرنے کی ایفرٹ کو انٹرنیشنلی سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے تو یہ اس طرح کی سکرمشز یا اس طرح کی کاروائیاں تمام گلف سٹیٹ میں اٹھ کھڑی ہوں گی. تو یہی سعودی عرب کا مطمع نظر ہے شاید کہ اگر آپ
اور آج سعودی عرب کے جو شاہ سلیمان ہیں انہوں نے جتنی بھی سیاسی دھڑے موجود ہیں جماعت یمن میں ان کو مذاکرات کی پیشکش بھی کی ہے اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ جماعتیں جو مختلف وہاں پہ موجود ہیں اور خاص طور پر ہوتیز جو ہیں وہ کہاں تک سعودی عرب کی جانب سے اس آفر کو اس پیشکش کو قبول کرتے ہیں یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. کل عرب لیگ کے اجلاس میں 40,000 فوجیوں پر مشتمل ایک مشترکہ عرب فوج کا اعلان کیا گیا ہے. مشتاق احمد مہر صاحب اور مشرق وسطی کے جو مختلف ممالک ہیں ان کی جب ہم بات کرتے ہیں اور خاص طور پر یمن کی جو اس وقت صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے اس پر قابو کرنے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ فورس جو ہے یہ کتنی مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟
یہ بہت پرانا آئیڈیا ہے جی. اس میں ایجپشن جو ہے وہ سر فہرست ہیں, وہ ہمیشہ سے کہتے رہے کہ ایک کامن عرب فورس ہونا چاہیے جس سے جہاں کہیں ڈیفیکلٹی ہے تو وہاں اسے بھیجا جائے, لیکن یہ آئیڈیا کامیاب نہیں ہوا کیونکہ جب عراق کویت کی جنگ ہوئی تو اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ ایک کمبائنڈ کمانڈ کے انڈر ایجپشن فورسز جو ہیں اس کو یہ عرب سولوشن کے نام سے گردانتے تھے اور اس کو پروپیگیٹ کرتے تھے, لیکن جو ریسیپیئن کنٹریز سے وہ تسلیم نہیں کرتے تھے. میں نہیں سمجھتا کہ ایجپشن لیڈ کے اندر جارڈینینز اور سیرینز اور سعودیز اور امیریٹ اور قطر کے جو سولجرز ہیں وہ اکٹھے ہوں گے. یہ نیٹو والا یا وارسا پیکٹ جیسی آرگنائزیشن عرب ممالک میں ممکن نہیں ہے, حالانکہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں یہ. اگر بہت دنوں سے جی سی سی کا ایک کامن ڈیفینس کی تھیسز ہم نے دیکھی ہے 20-25 سال سے, وہ اکوپمنٹ بھی ایک جیسا لیتے ہیں, وہ نیٹو اسپیسیفیکیشن کا اکوپمنٹ لیتے ہیں, لیکن کمانڈ کا بہت پرابلم ہے کیونکہ جیسے ہم نے یمن میں دیکھا ہے کہ جب فوج کلیپس ہوتی ہے تو سارا ملک کلیپس ہو جاتا ہے. تو وہ عرب نہیں چاہتے کہ کوئی کامن فورس ہو جو ہر چھوٹی موٹی ڈیفیکلٹیز میں سرحد پار کر کے آ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اس سٹیج پہ انورکیبل ہے. جو ہو سکتا ہے وہ کویت والا ایکسپیرینس ریپیٹ ہو سکتا ہے کہ ٹیمپریری طور پہ ٹرپس کو اکٹھا کیا جائے انڈر سم الائنس, جیسے کویت میں 40 ملک اکٹھے ہو گئے تھے, یا اگر 10-15 ملک اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی پروفیشنل آرمیز ہیں جیسے ریجنل آرمی ہے ٹرکی کی ہے, پاکستان کی ہے, ایجپٹ کی ہے, یہ آ کر ایک مینڈیٹ کے تحت یونائٹیڈ نیشن کا مینڈیٹ یا عرب کونسل کا مینڈیٹ یا ریجنل کنٹریز کی کونسل کا مینڈیٹ لے کر یہ لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کر کے کوئی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ لے کر آتے ہیں یا کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ لے کر آتے ہیں, تو اس قسم کا تو سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن 40,000 بندوں کی عرب فورس ریجن کو کنٹرول کرے, میں اس وقت میں اس کا پازیٹو نہیں ہوں.
اوکے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ مشتاق احمد مہر صاحب اتنے زیادہ آپٹیمسٹک نظر نہیں آتے جب اس عرب مشترکہ فوج کی کارکردگی کی ہم بات کرتے ہیں, یا آیا یہ وقت کے ساتھ ساتھ متحد جو ہے وہ رہ سکے گی یا نہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بیرسٹر صاحب 1973 میں بھی اس طرح کی ایک فورس جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف بنائی گئی تھی, وہ کتنی کس حد تک کامیاب رہی اور ابھی آپ کتنے آپٹیمسٹک ہیں یہ فورس کوئی کردار ادا کر سکے گی؟
میرے خیال میں جی سی سی جو ہے اس کا ڈپلومیٹک یا انٹرنیشنلی ایک متحدہ ایک ان کا جو وائس ہے وہ زیادہ کارگر ہے فوج کی نسبت. لیکن میرے خیال فوج بنانے کی بات لانگر ٹرم میں سعودی عربیہ سوچ رہا ہے کہ کل کو اگر پرامن ایران آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, اگر امریکہ کے ساتھ ان کے ہو جاتے ہیں یہ 6 ملکوں کے ساتھ, تو ان کا جو رول ہوگا ان کو آسانیاں پیدا ہو جائیں گی और वो अपना अपने आप को आगे बढ़ाने की जो कोशिश करेंगे उसके लिए मेरे ख्याल में वो पहले से पेशबंदी कर रहे हैं, ताकि डिफरेंट ममालिक की अगर फोर्सेस किसी एक पॉइंट पे इकट्ठी होंगी, असल मसला तो शायद वो हासिल करेंगे किसी और चैनल से, लेकिन यहाँ पे वो एक सिम्बॉलिक फोर्स के लिए अभी बात कर रहे हैं। ज्यादातर उनका यही होगा कि आप दूसरे मुल्कों की पेशकदमी रोकें और और सऊदी अरब में होने वाली उसके बैकलैश जो है उसको रोके, जैसे यमन में हो रहा है, कल को वो उठ के अगर इधर आने की कोशिश करता है तो ऐसी फोर्सेस मौजूद हो या ऐसी ताकत मौजूद हो जिसके जरिए एक सिंबॉलिक रेजिस्टेंस हो। ज्यादातर वो कोशिश यही करेंगे कि ऐसा मसला यहां तक पहुंचने ना पाए, और इसीलिए वो तमाम जो दूसरे ममालिक हैं, जो बेहतर ममालिक हैं, जहां जिनके पास इस तरह की सलाहियत है, उनको ऑन बोर्ड रखे कि अगर ऐसी जरूरत पड़े खुदा ना खास्ता तो वो उसको दफा कर सके। मेरा नहीं ख्याल ऐसी किसी भी, क्योंकि ज्यादातर जहां किंगडम्स हैं वहां एक यूनाइटेड फोर्स वाला जो है वो लंबे चौड़े अरसे तक नहीं आप इनको रख सकेंगे, केस टू केस बेसिस होगा। लेकिन अगर आप सामने रखें तो यूरोपियन यूनियन ने भी एक इस तरह का जो है काफी देर तक इस तरह की सलाहियत रखी है, तो हो भी सकता है, लेकिन इतना ज्यादा देर चलने वाला नहीं है कि आप छोटी मोटी एक फोर्स बना लें जो कि हर एक मुल्क का दफा करे, ऐसा होगा नहीं।
बिल्कुल बैरिस्टर साहब, यहाँ पे एक ये भी सवाल जहन में आता है कि मुश्ताक साहब आपसे इसका जवाब मैं जानना चाहूंगी। ये बात की जाती है कि जो होतीस है वो यमन के जो दूर दराज शुमाली इलाके हैं उससे इनका ताल्लुक है, ये तादाद में भी इतने नहीं हैं, इनके पास इतना एडवांस जो असलहा है वो भी नहीं है, तो इनके खिलाफ 40 ममालिक का इत्तेहाद बनाना, फिर इतनी बड़ी मुश्तरिका फौज जो है उसकी तश्कील का ऐलान करना, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? और साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कई रोज से सऊदी अरब की क़यादत में इत्तेहाद जो है वो फिजाई कार्रवाई भी इनके खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन अब भी ये होतीस जो हैं ये पेशकदमी कर रहे हैं, तो आगे अब क्या देखते हैं सूरत हाल को? क्या जमीनी कार्रवाई की नौबत आएगी यमन में, और ये होतीस जो हैं ये इतने ताकतवर किस तरह हो गए?
आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, हम लोग बिल्कुल समझ नहीं सकते, कोई 30-35 हज़ार के करीब उनकी ट्राइबल फोर्स है होतीस की, उसके लिए इतना बड़ा मैसिव एयर ऑपरेशन, और सऊदीज बिल्कुल पैनिक में चले गए हैं। जो प्रॉब्लम है वो बुनियादी तौर पे ट्राइबल है और वो साउथ और नॉर्थ यमन का प्रॉब्लम है जो कि मुद्दत से सॉल्व नहीं हो सका, और ये जब से यमन और सऊदी अरेबिया के बॉर्डर पे तेल की डिस्कवरी हुई है तो इकोनॉमिक फ्रिक्शन उसमें आ गया है, और तीसरी बात ये हुई कि जब कुवैत की जंग हुई तो 7 लाख के करीब यमनी जो सऊदी अरेबिया में काम करते थे उनको जबरदस्ती निकाल गया, तो एक एंटी सऊदी फीलिंग वहां पे पैदा हो गई, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको गल्वेनाइज किया वो साले साहब की 30 साल की हुकूमत में, जिसको प्रोटेक्शन हासिल थी, लेकिन वो साले साहब को जब निकाला गया तो उन्होंने कहा जी अब मैं देखता हूँ कि कौन पावर में आता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा नहीं है जितना प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और खास तौर पे सऊदी का ये कहना कि अदन की पोर्ट पे कब्जा हो गया तो तेल की सप्लाई, वो अदन की पोर्ट पे कब्जा नहीं कर सकते ये लोग, इतना पावरफुल नहीं है, ना इनके पास एयर पावर है, ना इनके पास फुट सोल्जर्स हैं, ना इनके पास इतना ज्यादा असला है। ईरान ने जरूर हेल्प की होगी क्योंकि ये इतने दिनों से जो हुकूमत को आप सना में हुकूमत को अपसेट किया है और इतना बड़ा चेंज लाए हैं, तो जरूर कोई ना कोई रीजनल पावर और कोई ना कोई बाहर की ताकत उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी भी रिजॉल्व हो सकता है, और मैं समझता हूँ कि अगर एक दो मुल्क मिल जाए, इजिप्ट जैसे विलिंग है एक्शन लेने को, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया, तो वो काफी हद तक नेगोशिएट भी कर सकते हैं और फिजिकली भी रिकंकर कर सकते हैं अपना सना को भी और अदन को भी।
ओके, आप चूंकि इन इलाकों में काफी अरसा रहे हैं, मुश्ताक अहमद मेहर साहब, नेक्स्ट सवाल आप ही से ये मैं करना चाहूंगी कि यमन में हमने देखा है पहली भी बहुत बगावतें जो हैं वो आती रही हैं और फिर उन हालात जो है उस पर काबू भी पा लिया गया, तो उस वक्त माजी में क्या तरीके कार जो है वो अपनाया गया था, और इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं इस पर किस तरह काबू पाया जा सकता है, क्या करना चाहिए?
جی یمن میں کوئی پولیٹیکل سسٹم کامیاب نہیں ہوا. بہت کوشش کی گئی کہ وہاں پہ کسی قسم کی جمہوریت لائی جائے, اور پہلے ایک تجربہ کیا گیا, سعودی جو تھے وہ فنڈ کرتے تھے نارتھ کو تاکہ ساؤتھ کی جو گارڈ لیس کمیونسٹ ریجیز ہیں ان کو ہٹایا جائے, لیکن اب وہ عدن کی پروٹیکشن کے لیے یہ سارا کاروبار کر رہے ہیں. وہاں پہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ ڈیولپ نہیں ہو سکی, اور نارتھ ساؤتھ کا جو پرینیل پرابلم ہے جس کی وجہ سے بن لادن وغیرہ کو انکریجمنٹ ملی, اسٹیٹ پروٹیکشن ملی, بن لادن کا ویلیج ہے وہاں پہ, تو وہ پرابلم حل نہیں ہوئے. اس کا سولوشن یہ ہو سکتا ہے کہ یونائٹیڈ نیشن اس ملک کو 5 سال 10 سال کے لیے اپنے مینڈیٹ میں لے, یا یہ یونائٹیڈ نیشن کی وہاں پہ کوئی فورسز تعینات ہوں, اور افغانستان کی طرح کوئی ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن لائی جائے, اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں, اور جو ٹرائبل ریپرزنٹیشن ہے اس کو اسٹرینتھن کیا جائے. اب بڑا امبیلنس ہے یمن کی کانسٹیٹیوشن میں, اور ڈومینیشن ہم نے دیکھا ہے کہ 30 سال تک ایک بندہ آرام سے بیٹھا حکومت کرتا رہا ہے, اور جب وہ گیا تو سارا ملک کریپس ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹیڈ نیشن کا بہت بڑا رول ہے. اگر یونائٹیڈ نیشن یہ ریسپانسبلٹی ایکسیپٹ کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ افریقن کنٹریز کے ساتھ, وہاں بھی ہم نے دیکھا تھا, آپ کو یاد ہے وہ 1990 میں سارا بلیک افریقہ جو تھا وہ اس قسم کے عذاب میں مبتلا تھا, کانگو ہوا, اس کے بعد ہوتیز اور تسی کا جھگڑا ہوا. تو یونائٹیڈ نیشن کے پاس ٹولز اینڈ مینز ہیں, اور وہ یونائٹیڈ نیشن کی فورسز بھی آ سکتی ہیں, اور وہ اپنے جو ہے پرنسپلز بھی اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں.
جی بہت شکریہ آپ کا مشتاق احمد مہر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہماری طرف سے اللہ حافظ. بیرسٹر امجد ملک صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, اور یہاں سے ڈاکٹر مقتدر خان صاحب نے بھی, معروف تجزیہ نگار ہیں آپ, انہوں نے بھی یو ایس سے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں اس وقت ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق جو مذاکرات اس وقت سوئٹزرلینڈ میں جاری ہیں اس پہ ہم بات کریں گے, اور یہ کہ کل کی جو ڈیڈ لائن ہے 31 مارچ کی, کیا اس ڈیڈ لائن کو مذاکرات کار جو اس وقت بات چیت میں مصروف ہیں اس کو وہ میٹ کر سکیں گے یا نہیں, اس پہ بات کریں گے. لیکن ہمیں کہا جا رہا ہے پہلے ہم نے ایک مختصر سی بریک لینی ہے, اسٹے ود اس, بریک سے واپس آ کے گفتگو یہیں سے جاری رکھیں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی سامعین, ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام ان دی نیوز, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس, اور ڈاکٹر مقتدر خان صاحب آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. ایران جوہری پروگرام سے متعلق جس طرح تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ اس وقت بھی مذاکرات جو ہیں وہ جاری ہیں, بات چیت جاری ہے, اور اب بھی یہ اطلاعات ہیں کہ کچھ ان ریزالو ایشوز جو ہیں وہ اب بھی میز پر موجود ہیں. 18 ماہ سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, 2 ڈیڈ لائنز جو ہیں آلریڈی مذاکرات کار مس کر چکے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کل کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ یہ میٹ کر پا سکیں گے یا نہیں؟
دیکھیے ابھی تک دونوں جو سائز ہیں تقریباً 7 ملک جو انوالو ہیں اس میں وہ سب کافی انویسٹڈ ہے اس ڈیل میں. صدر اوباما خود کافی انویسٹڈ ہے اس ڈیل میں, تو مجھے لگتا کہ اس لیے وہ پش ضرور کریں گے. لیکن صدر اوباما نے یہ بھی اناؤنس کیا ہے کہ اس کے بعد وہ ڈیڈ لائن نہیں بڑھائیں گے, کیونکہ ڈیڈ لائن پچھلے 6 مہینے سے مسلسل آگے اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں. لیکن پارٹیز اتنا انویسٹڈ ہیں اور دونوں کے لیے اتنے مفاد ہیں اس ڈیل سے, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ کے وہاں سے نکل جائیں گے. لیکن 2-3 ایسے مسئلے ہیں جس پہ بات اٹکی ہوئی ہے. ایک جو نیوکلیئر فیول کے ایکسپورٹس کی ہے, یعنی ایران جب فیول یوز کرتا ہے تو جو پیوریفائی ہو جائے گا یورینیم, ویسٹرن ممالک چاہتے ہیں کہ وہ پورا کا پورا ایکسپورٹ کر دے. ایران نے پہلے रशिया को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन अब कहता है कि वो प्योरीफाइड यूरेनियम को वो रिसर्च और मेडिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, उसे एक्सपोर्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज ये है कि हम वेस्टर्न ममालिक चाहते हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर रिसर्च तकरीबन 10-12 साल तक कुछ एडवांसमेंट्स ना करे, और उसके बदले ईरान चाहता है कि सैंक्शंस इमीडिएटली लिफ्ट हो जाएं। वो उसके लिए भी वेस्टर्न ममालिक तैयार नहीं है, वो चाहते हैं कि सैंक्शंस धीरे धीरे लिफ्ट होंगे और ऐसे मैकेनिज्म्स होंगे कि उन्हें वापस फिर से इंस्टीट्यूट किया जा सके। तो ये जो निटी ग्रिटीज हैं डील्स की, उसके ऊपर, डिटेल्स के ऊपर बहस की जा रही है। जो ब्रॉड प्रिंसिपल है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को 10 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा इन एक्सचेंज फॉर सैंक्शंस का लिफ्टिंग, उसके लिए तो दोनों पार्टीज तो तैयार हो चुके हैं। तो एटलीस्ट एक फ्रेमवर्क तो है जिसके लिए वो तैयार है, डिटेल्स पे वो बहस कर रहे हैं इस वक्त।
ठीक, लेकिन 18 माह से हम देख रहे हैं ये मुजाकिरा जारी है, इन्हीं इश्यूज पे जो है बात हो रही है, बल्कि अब तो जिस तरह आपने कहा मुख्तर खान साहब के पहले ईरान जो था वो राजी था कि वो यूरेनियम को जो है उसको एक्सपोर्ट करेगा रशिया को, लेकिन अब वो भी उससे पीछे हट गया है। तो ये जो अनरिजॉल्व इशूज का जिक्र किया डॉक्टर मुख्तर खान साहब ने, बैरिस्टर अमजद मलिक साहब आप क्या समझते हैं, ये अभी जबकि चंद घंटे बाकी है डेडलाइन में, ये रिजॉल्व हो जाएंगे?
जी शुक्रिया। मेरे ख्याल में ईरान दोनों तरफ से अभी एडवांटेजेस पोजीशन में है, क्योंकि वो एक तो उन्होंने उनको उलझा लिया है कि वो मुजाकरात की टेबल पे हैं और 6 मुल्क इंटरेस्टेड हैं। आपको पहले भी पता है यूनाइटेड नेशन में भी ये वीटो पावर रखने वाले मुल्क जो हैं जब किसी भी जगह के ऊपर आके इंटरेस्ट लेते हैं तो ज्यादातर फिर बाद मुजाकरात एक्सटेंड होती जाती है। तो उसे ईरान का एक एडवांटेज इसमें यह है कि कंटिन्यूसली उसने एंगेज रखा है मुजाकरात में बड़े ममालिक को। दूसरा, इनिशियली वो राजी है 10 साल के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको फ्रीज करने के लिए, और साथ वो एक्सटेंड करता जा रहा है कि उसको फैसिलिटीज ज्यादा मिले, मसलन लिफ्टिंग सैंक्शंस, आईए की इंस्पेक्शन का जो दुरानिया होगा पे, वो सेंट्री रिफ्यूजेस जो इनरिचमेंट है प्लान उसमें वो कह रहा है कि मुझे तकरीबन 10,000 सेंट्री रिफ्यूजेस मशीनों को ऑपरेशनल रखने का करे। अमेरिका ये नहीं मान रहा, वो आधे के ऊपर मुजर है। फिर जो जैसा कि खासा ने बात की कि वो चाह रहा है कि जो इनरिच जो है प्योरीफाइड यूरेनियम उसकी वो इस्तेमाल में वो कहता है कि मुझे न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए, रिसर्च के लिए, और उसमें भी पेशरफ्त हो रही है कि रशिया की तरफ से वहां से यूज्ड फ्यूल जो है आप ले ले। तो मेरे ख्याल में ऑन 4-5 फ्रंट्स के ऊपर उन्होंने इनको एंगेज रखा है, और अगर बात एक या दो चीजों के ऊपर रुकती है तो मुझे लगता है कि ये आगे भी बढ़ सकती है। सो एक्सटेंशन विल बी पॉसिबल, क्योंकि अमेरिका इसको देख रहा है कि अगर इस तरह का कोई मुआदा हो जाता है तो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर अमेरिका की साख बढ़ेगी कि रादर देन मिलिटरी सॉल्यूशंस वो किसी डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन भी हासिल कर सकते हैं ऐसे ममालिक के साथ जिनके साथ उनके अच्छे डिप्लोमेटिक रवाबत नहीं रहे। सो जो ये अमेरिका के लिए मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी विन होगी अगर वो किसी ना किसी स्टेज के ऊपर ड्यूरिंग 2015 वो ऐसा कोई मुआदा कर लेते हैं ईरान के साथ जो जौहरी तवानाई रखने या उसके करीब जाने की, एटमी बम बनाने की सलाहियत रखता है, तो ये इंटरनेशनली एक कामयाबी समझी जाएगी अगर वो ईरान को रोकते हैं। क्योंकि अगर आप बाकी बड़े मुल्कों की बातें देखें या सुने या उनका मौकफ देखें तो वो हर सूरत में ये चाहते हैं कि ईरान एटमी बम हासिल ना करे, और उसके लिए मेरे ख्याल में नेगोशिएशन आगे पीछे करना बहुत मामूली और सतही बात होगी।
ठीक है, ये बताइए डॉक्टर मुख्तर खान साहब के इस बातचीत से मुतल्लिक काफ़ी जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन एक सवाल जो उठाया जाता है उसका जवाब या मुमकिन आंसर जो है अभी तक नहीं आया है कि अगर ये माहिदा तय होता भी है तो इसकी निगरानी कौन करेगा कि आया सऊदी अरब जो है वो इस माहिदे पर अमल दरामद करता है या नहीं, और अगर वो नहीं करता तो फिर क्या होगा उस सूरत में?
देखिए, ये जो डिटेल्स जो डिस्कस वो इसी के बारे में डिस्कस हो जा रहे हैं कि ये अग्रीमेंट को एनफोर्स कैसा किया जाएगा। एक तो एक ईरान चाहता है तसल्ली के सैंक्शंस इमीडिएटली लिफ्ट हो जाए ताकि उसे पता चल जाए कि जो वेस्टर्न कमिटमेंट्स हैं वो पूरी हो रहे हैं, वो तो बड़ी आसान है। लेकिन जो ईरानियन कमिटमेंट्स हैं कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को वेपनाइज की तरफ नहीं इस्तेमाल करेगा, वो बिल्कुल टोटल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेगा, जिसमें ईरान का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है न्यूक्लियर मसले पर। तो ये सैंक्शंस की जो मैकेनिज्म्स है वो कैसा इंप्लीमेंट किए जाएंगे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के जो प्रोटोकॉल्स है, इंस्पेक्शंस के, सरप्राइज इंस्पेक्शंस के, वो सारी डिटेल्स, हो सकता कि अमेरिका डिमांड करे कि ऑन लोकेशन से कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग हो कि ईरान में क्या हो रहा है, उसकी किस किस्म की रिसर्च और डेवलपमेंट हो रही है। जो रिएक्टर्स होते हैं वो ना सिर्फ यूं कहिए कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग इदारे होते हैं, वहाँ पे काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च भी होता है, मुख्तलिफ किस्म का मेडिकल रिसर्च, स्पेस रिसर्च, और तो वो सारे रिसर्च प्रोजेक्ट पे नज़र रखे, इसके लिए जो मैकेनिज्म है। दूसरी चीज़ है, ईरान चाहेगा कि ये जो इंस्टीट्यूशंस उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं उसमें इजरायली जासूस ना हो, मिसाल के तौर पे क्या वो अमेरिकन एजेंसीज के, इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ कुछ एक्शंस ले सकते हैं। इससे पहले इजरायल और अमेरिका ने मिलके वायरसेस वगैरह उनके कंप्यूटर्स में छोड़ दिया, तो इस तरह के तो जो डिटेल्स हैं वो आइंदा 6 महीने में या 3 महीने में तय किए जाएंगे। वो बेसिकली चाहते हैं कि ट्यूसडे रात को टाइम डेडलाइन पास होने से पहले एक ब्रॉड इन प्रिंसिपल अग्रीमेंट हो जाए, ताकि वो कहिए कि ये 5 या 6 प्रिंसिपल्स के हम दोनों अग्रीमेंट है, अब डिटेल्स वर्कआउट किया जाएगा। ईरान चाहता है कि वेंसडे से सैंक्शंस लिफ्ट हो जाए और वो डिटेल्स वर्कआउट किया जाए। और इससे पहले ईरान ने एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जरूर लिया है कि उसने अपने करंट जो प्रोग्राम है उसको यूं कहिए कि ऑन होल्ड रखा है ड्यूरिंग दीज टॉक्स, वजह से भी उसकी थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी वेस्टर्न नेगोशिएशंस के नजर में बढ़ गई है।
ठीक, राइट, ओके। ईरान का जो डॉक्टर खान साहब
पॉजिटिव है सिवाय फ्रांस के बनिस्बत अमेरिका के, अमेरिका का एक प्रॉब्लम ये है कि नेतन्याहू और कांग्रेस के वजह से अमेरिका का थोड़ा पल्ला कमजोर हो गया है पिछले चंद हफ्तों में, लेकिन जो जर्मनी, रशिया, बरतानिया है वो काफी कॉन्फिडेंट है कि ईरान के साथ डील हो सकती है।
ठीक है, ओके। बैरिस्टर मलिक साहब, जिस तरह डॉक्टर खान ने कहा है कि ईरान का एक मुतालबा है कि जो उनके खिलाफ पाबंदियां हैं उसको बुध के रोज से उठाया जाए, और ये भी उनका कहना है कि ये एक ही स्टेप में उठाई जाएं सारी पाबंदियां, जबकि ये हमें मालूम है कि ईरान के खिलाफ पाबंदियां जो हैं वो सिर्फ अमरीका की जानिब से नहीं है बल्कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो अक़वामे मुत्तहिदा की तरफ से भी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं ईरान पर, तो इन सारी पाबंदियों को एक स्टेप में उठाना ये कहां तक मुमकिन होगा?
मेरे ख्याल में अगर तो मुआदा हो जाता है तो, क्योंकि इसमें रशिया की इन्वॉल्वमेंट होगी, जर्मनी, फ्रांस की इन्वॉल्वमेंट होगी, यूके की और चीन की, तो मेरे ख्याल में पाबंदियां उठने के इम्कान हो गए, लेकिन आपकी बात ठीक है, ग्रेजुअली होगा और ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो भी ग्रेजुअली जाएगा, इतनी आसानी से वो डिप्लोमेटिकली तो इंटेंगल कर लेंगे कि जी आप 10 साल तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन वो आईएए की जो इंस्पेक्शंस हैं, उनकी रिपोर्ट्स, उनके इंस्पेक्टर्स के साथ ताउन, आपने इराक वॉर में देखा है कि इराक के ऊपर मामले के ऊपर सदाम हुसैन के साथ किस तरह का ताउन रहा, और किस तरह जब अमेरिका ने चाहा वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के ऊपर फिर वो चले गए अंदर। मेरे ख्याल में ईरान के लिए भी बाइंग टाइम, दोनों समझ रहे हैं पार्टीज के बाइंग टाइम इज बेनिफिशियल फॉर इंटरनेशनल वर्ल्ड रीजन के लिए, ताकि दोनों पार्टियां अपने आप को रीग्रुप करें, अपने आप को रीएनर्जाइज करें। ईरान भी थक चुका होगा पाबंदियों की वजह से, और अमेरिका भी एक जंगी जो जुनून है या जंगी एक अलामिया है उसके जरिए से हर चीज को हल करने वाला जो मामला है इराक और अफगानिस्तान वॉर के बाद, वो समझ रहा होगा कि हमें दूसरा चैनल भी अपनाना चाहिए, ताकि जब हम मिलिटरी सोल्यूशन की तरफ जाएं तो दुनिया हमारे ऊपर उंगलियां ना उठाए कि आपने अदर चैनल्स जो है एग्जॉस्ट नहीं किए। सो मैं नहीं समझता कि ट्रस्ट डेफिसिट इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। ईरान विल टेक कंसेशंस, ही विल मेक यूज ऑफ इट एंड ही विल डू व्हाटएवर दे इन देयर इंटरेस्ट के वो क्या करना चाहते हैं, और अमेरिका एज अ वॉच डॉग ही विल गिव देम कंसेशंस बट ऑल्सो यूज दिस सक्सेस इन गेटिंग दिस अग्रीमेंट के पूरी दुनिया को दिखाए कि देखिए हम डिप्लोमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं मामलात को, और हम ही इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो है यूनिलैटरल जो है उनकी पोजीशन वो स्ट्रांग है, अमेरिका चाहता है कि बायोलेटरल डायलॉग के जरिए मामलात को हल करे, अमेरिका चाहता है कि दुनिया सेफ रहे और एटमी बम जो है दूसरे मुल्कों तक ना पहुंचे, तो ये दोनों विन विन पोजीशन में होंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर नजर रखेंगे और वो उनसे एक कंसेशन सीख करेंगे और ये उनके ऊपर नजर रखेंगे कि इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है आगे आगे जाता रहे और जितना दुनिया में इनको डिले कर सके टू रीच आउट टू दी एटॉमिक फैसिलिटी, उतना वो समझेंगे कि डिले इज इन दी larger interest of the international peace and world.
Okay. Dr. Mudir Khan sahab, nuclear talk se mutalik aakhri sawal main aap se karna chahungi, phir sham ke wahan pe jo khana jangi jari hai 4 saalon se, wahan kuch developments hui hai, us pe aapke comments lena chahenge. Ye batayega ke kal ki deadline meet hoti hai ya nahi, dono suraton mein next step jo hai wo kya hoga?
Dekhiye, agar kal ki deadline agar wo meet nahi karte hain to uska jo logical सोल्यूशन ये है कि ईरान के ऊपर और मजीद सैंक्शंस वो तायद कर देंगे. कांग्रेस ने धमका दी है कि अगर 15 अप्रैल तक कोई डील नहीं होती तो वो नए सैंक्शंस ईरान के ऊपर लागू करने के लिए तैयार हैं. और ये तो सैंक्शंस का तो वोट तो मार्च में लेने वाले थे, लेकिन डेमोक्रेट्स की मदद से उन्होंने सदर ओबामा को, बेसिकली सदर ओबामा को टाइम दिया कि वो किसी न किसी अग्रीमेंट पे ईरान को तैयार कर लें. ईरान की इकोनॉमी पर इतना मतलब पिछले 10-15 साल से ये सैंक्शंस ने ईरान की इकोनॉमी को इतना तबाह बर्बाद कर दिया कि ईरान कैन नॉट अफोर्ड और मजीद 5-10 साल सैंक्शंस इसी तरह से और मजीद सैंक्शंस इसके ऊपर, जो अब करंटली जो स्टेट ऑफ सैंक्शंस है उसकी एरोनॉटिकल इंडस्ट्री, उसकी मेडिकल इंडस्ट्री, उसके एक्सपोर्ट्स वगैरह काफ़ी उस पर काफ़ी नुकसान हुआ है. और ईरान हालांकि ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, वो अल्टीमेटली नेट ऑयल इम्पोर्टर है, जिसका मतलब ये है कि उसकी जो ईरान की जो ऑयल वेल्थ है वो उस तरह से उसे नहीं बचाती जिस तरह से मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया या कतर जैसे मुल्कों को ऑयल वेल्थ का बेनिफिट होता है. तो ईरान की नज़र में अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स उसके लिए अहम नहीं है तो वो ये डील शायद एक्सेप्ट कर ले. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन मुल्कों में नेशनल प्राइड भी एक चीज़ आ जाती है, जिसके वजह से वो यूं कहिए कि मटेरियल नुकसान सह लेते हैं अपने नेशनल प्राइड के लिए. और ईरान इस वक्त ऐसे सिचुएशन में है कि वो या तो अपने नेशनल प्राइड कॉम्प्रोमाइज़ करे या अपनी इकोनॉमी को बचाए. दूसरी चीज़ ये है कि जो रीजन के हालात जो बद से बदतर होते जा रहे हैं उससे ईरान की जो पोजीशन है वो काफ़ी महफूज हो गई है, स्ट्रांग हो गई है. ईरान इराक में एक मेजर प्लेयर है, सीरिया के सिचुएशन में मेजर प्लेयर है, अब यमन का जो प्रॉब्लम है वहाँ पे भी ईरान का मेजर रोल है. तो अगर अमेरिका अपना नेगोशिएशंस को थोड़ा ब्रॉड कर लेता है, यानी ग्रैंड बार्गेन की तरफ मूव करता है, तो हो सकता है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम से हट के भी दूसरी चीज़ों में ईरान के साथ वो कोऑपरेट करे. ऑलरेडी इनडायरेक्ट कोऑपरेशन तो आईसिस के खिलाफ हो रहा है इराक में.
जी.
हो सकता है कि ईरान एक पार्टनर बन जाए अमेरिका का मिडल ईस्ट के जो मसाइल हैं उसे हल करने में, और उससे सैंक्शंस वगैरह लिफ्ट किया जा सकता है.
ठीक है, ओके. अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शाम में कहा जा रहा है कि अलकायदा से मुंसलिक एक ग्रुप ने अल दलीब नामी एक जो शहर है उस पर कब्जा किया है. बैरिस्टर साहब, आप हमें बताइए कि इस शहर की अहमियत क्या है और इस पर कब्जा करना जो है ये सदर असद की हुकूमत के लिए कितना बड़ा धचका है.
मैं समझता हूँ कि ये ऑलरेडी असद के खिलाफ जो है काफी मजामत है, इंटरनेशनली भी आपके सामने है. और सीरिया को इस टाइम पे इस तरह की हरकत जो है वो काफ़ी महंगी पड़ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी यमन में इस तरह की ईरान बैक्ड कार्रवाइयाँ जो हैं उसके ऊपर रिटेलिएशन हो रही है. आपके सामने ही है जीसीसी का जो रिएक्शन है, यही यहाँ होगा, क्योंकि सीरिया जो है वो ऑलरेडी अंडर द वॉच है यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी, और खित्ते में स्पेशली इसराइल का उनके साथ जो है मुखासमत पहले से ही है. तो मेरे ख्याल में कोशिश यही होगी कि वो उनको वापस उस तरफ लेके आए कि वो एक पीसफुल अपने आप को रखें, ताकि इंटरनेशनली उसका उसके ऊपर कोई रिएक्शन या उसके ऊपर कोई एक्शन ना हो.
ठीक, लेकिन ये भी फिर यहाँ पे देखना है डॉक्टर खान के ये दूसरा, अगर हम देखें शाम का सूबाई दारुल हुकूमत है जिस पर के अलकायदा से मुंसलिक ग्रुप ने कब्जा किया है, तो हालात जो हैं शाम के वो किस तरफ जा रहे हैं, और अगर सदर बशारुल असद की हुकूमत को हटाया भी जाता है तो उस खला को जिस तरह हम देख रहे हैं, स्पेस को दहशतगर्द ग्रुप जो हैं उसको जिस तरह पुर कर रहे हैं, ये कितना थ्रेटनिंग साबित हो सकता है दुनिया के लिए?
देखिए वो जो सिचुएशन है वो इतना अजीब हो गया है मिडल ईस्ट का कि अगर आप चीज को एक जगह बंद करते हैं तो वो दूसरी तरह से दूसरी जगह पर वो क्राइसिस के तौर पे इमर्ज हो जाता है। मिसाल के तौर पे पिछले 3-4 महीने से मुसलसिल दिसंबर से आइसिस के ऊपर एयर स्ट्राइक किए जा रहे हैं वेस्टर्न ममालिक और अरब ममालिक। बीच में जॉर्डन ने एक दो हफ्ते तक काफी सीरियस कैंपेन लॉन्च किया
जी।
तो ये जो कैंपेन एयर स्ट्राइक की चल रही है उससे कई बेनिफिट ये हुए हैं कि बगदाद महफूज हो गया है, बगदाद की जो सड़क है जो कनेक्ट करती है अरबिल को वो भी तकरीबन सेफ हो गई है, वेस्ट कंट्रोल में है। लेकिन उसके बावजूद मतलब आईसीस का जो एक्सपेंशन है इराक में वो तो बंद हो गया
जी।
टर्की की तरफ भी वो जा रहे थे, कुर्दिस्तान की तरफ भी, नॉर्दर्न कुर्दिस्तान की तरफ वो जा रहे थे, वो सारी उनकी एक्सपेंशन रुक गई है। लेकिन उनका जो कंट्रोल है बास टेरिटरीज में इराक में और सीरिया में वो तो वैसे के वैसे ही है। लेकिन ये सारे के सारे आईसिस के खिलाफ ऑपरेशन ज़्यादातर 90% से ज़्यादा इराक के ही टेरिटरीज में हुआ है, सीरिया में नहीं। तो जो सीरिया के खिलाफ, सीरिया में इस वक्त भी आईसिस और अलकायदा जैसे ग्रुप्स काफ़ी मजबूत हैं, उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं हुए हैं। तो वो जब तक नहीं होंगे, जब तक कुछ अंडरस्टैंडिंग बशार अल असद के साथ नहीं पहुंची, मतलब वेस्टर्न ममालिक ओपनली मतलब बशार अल असद के एनिमीज को अटैक करते हुए नजर नहीं आना चाहते हैं सीरिया में, तो वो एक अजीब सा सिचुएशन है
जहाँ
दोनों साइड्स वेस्ट दोनों साइड्स को नहीं सपोर्ट करता। अब वहाँ पे एक्चुअली 3 साइड्स बन गए हैं और एक साइड को वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो जो सीरियन ऑपोजिशन आर्मी है वो बिल्कुल ही कमजोर हो गई है, उसका कोई रोल ही नहीं रहा है सीरिया के करंट हालात में। तो जब तक के बशार अल असद के साथ कोई ऐसा अंडरस्टैंडिंग नहीं आती कि वो मतलब फ्यूचर में फ्यूचर बियॉन्ड अगर असद नजर नहीं आता सीरिया में, तो ये सूरत हाल चलते रहेगी। सीरिया को बचाने के लिए अब कोई ना तो अरब मुल्कों में इंटरेस्ट नजर आ रहा है ना तो वेस्ट में इंटरेस्ट आ रहा है। अभी तो सिचुएशन और तंग हो गया है, मतलब डिस्ट्रैक्शन जो यमन में पैदा हो गया है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अगर आप देखें आईसीस को, अगर वो इराक में दबाते हैं तो वो नाइजीरिया में नजर आ जाता है या लिबिया में आ जाता है। तो ये जो एक ट्वीट सा सिचुएशन हो गया है, अरब वर्ल्ड एक सबसे बॉर्डरलेस केओस हो गया है। और इसमें तक के रीजनल इनिशिएटिव नहीं मजबूत होते। एक नया इनिशिएटिव जो सदर इजिप्ट के अनाउंस किए हैं कि एक अरब आर्मी जो क्रिएट करना चाह रहे हैं वो, ताकि आईसिस जैसे थ्रेट्स को डील करे, हो सकता कि उसको अगर वेस्ट ममालिक मजबूत करें तो हो सकता कि वो
हालात जो हैं वो किसी हद तक कंट्रोल में आ जाए। ओके,
यहाँ
पे जी डॉक्टर खान साहब, टाइम
की नहीं होगी बल्कि खाली स्टेबिलिटी की होगी, मॉनार्की और डिक्टेटर फिर से लागू हो जाएंगे।
ओके ओके, थोड़ा सा प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और बैरिस्टर साहब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, इस वक्त अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो है बान की मून वो बगदाद में मौजूद है और इत्तला'आत के मुताबिक वो इराकी वजीर आजम और बाकी जो इराक के ओहदेदार हैं उनसे मुलाकात करेंगे, मुमकिन तौर पर इस बातचीत का एजेंडा जो है वो आप क्या देखते हैं?
मेरे ख्याल में ये जो पिछले जो कुछ हफ्तों या महीनों से हम देख रहे हैं जो इराक में जो स्क्रिमिशेस चल रही हैं उससे इराक को बचाने के लिए ज़रूर वो बात करेंगे, क्योंकि आईसिस का जो, जैसे खान साहब ने भी कहा है कि आईसिस का जो रोल है इराक और सीरिया के हवाले से, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप देखें कि अमेरिका का दो रोल हैं, एक इराक और सीरिया आईसिस के खिलाफ डिफरेंट है और ये जो यमन में कार्रवाई है उसमें डिफरेंट है, और दोनों तरफ ईरान का कोई ना कोई रोल है जिसमें एक तरफ वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ अपोज कर रहे हैं। तो बान की मून चाहेंगे कि इराक की फौजें जो हैं सीरिया आईसिस का मर्दानावार मुकाबला करें, उसमें उनको क्या सहूलत चाहिए या यूनाइटेड नेशन की तरफ से उनको क्या मदद चाहिए, उसके ऊपर भी बात होगी। बाकी उनकी जो रनिंग है जिसके ऊपर इराकी फौज को भी शायद मदद की जरूरत हो यूनाइटेड नेशंस की, क्योंकि कोई इंटरनेशनल ऑर्डर के तहत ही यहाँ पे बाकी अफवाज फजाइया जो है मदद के अलावा ग्राउंड ट्रूप्स आ सकते हैं, वो किसी इंटरनेशनल ऑर्डर के बगैर नहीं आ सकते। कोई भी मुल्क इस तरह बगैर इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के यहाँ आना नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि कोई इस तरह का इंटरनेशनल डिक्री हो जिसके तहत उनकी जो अंदर जो आके आईसिस का मुकाबला करना है या उनकी इराकी फोर्सेस की हेल्प करना है वो लीगैलिटी इशू ना बने और वो अपने अपने मुल्कों की पार्लियामेंट को जवाब दे हैं तो वहाँ वो बता सके कि हम इंटरनेशनल वर्ल्ड या इंटरनेशनल ऑर्डर के तहत वहाँ हैं। तो ये बातें मेरे ख्याल में लाजमन उनकी गुफ्तगू का हिस्सा होंगी।
ओके, बेहद शुक्रिया बैरिस्टर अमजद मलिक साहब आपका, और डॉक्टर मुख्तर खान साहब आपके भी हम शुक्रगुजार हैं, आप लोगों ने हमें टाइम दिया। हमारी तरफ से जी अल्लाह हाफिज। और इस वक्त पिशावर से अर्शद हारून साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अर्शद हारून साहब। जी अर्शद हारून साहब, कल पिशावर में पाकिस्तानी फौज के एक लेफ्टिनेंट कर्नल को हलाक किया गया, जिसकी बाद में बल्कि आज जिसकी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान तहरीक तालिबान ने कबूल की है। ये बताइए कि क्योंकि हम सुन रहे हैं कि ये वाकया जो है ये पिशावर का जो एक पोश एरिया है हयातबाद वहाँ पे पेश आया है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी के क्या इस वक्त सिचुएशन है और इस तरह के वाकयात का रूनुमा होना हयातबाद जैसे इलाके में, इसकी क्या वजूहात आप देखते हैं?
पहले तो एक बात समझ लेनी चाहिए कि सिक्योरिटी के जो इकदाम 16 दिसंबर से पहले थे वही इकदाम 16 दिसंबर के बाद हमें पिशावर में दिखाई देते हैं, तो उसमें कोई खास फर्क तो नहीं आया
जी।
दूसरी बात ये कि 16 दिसंबर के वाक़े के बाद जब पूरी कौम ने ये फैसला किया कि इन दहशतगर्दों से लड़ना है, तो साइबर वन ऑपरेशन पहले से चल रहा था, खैबर 2 लॉन्च किया गया, लेकिन हयातबाद में इसके एग्जैक्टली एक महीने बाद इमामिया मस्जिद पे हमला हुआ। इसके बाद इसके साथ साथ लाहौर में चर्च पे हमले हुए और शिकारपुर में भी इमाम बारगाह को निशाना बनाया गया। तो सिक्योरिटी की अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखें तो उसमें हमें कोई खास इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आती। हाँ, अलबत्ता एक हद तक ये बड़े हमले जिस तादाद में होते थे वो होने कम हुए हैं, लेकिन इन हमलों से जाहिर होता है कि जो दहशतगर्द हैं उनमें अब भी ये ताकत है कि किसी को किसी जगह किसी भी वक्त निशाना बनाया जा सकता है।
ओके अर्शद हारून साहब, खैबर एजेंसी में जो ऑपरेशन है ये शुरू होने से पहले जो मुख्तलिफ फौज के ओहदेदार थे उनकी तरफ से ये बयानात आते थे कि चूंकि ये पिशावर से मोहलिका इलाका है तो इस ऑपरेशन के बाद अगर ये कामयाब रहता है तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि पिशावर में सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी आएगी। तो खैबर 1 तो कंप्लीट भी हो चुका है ऑपरेशन, अब खैबर 2 ऑपरेशन जो है वो भी जारी है, उसमें कुछ इसमें कोई शक नहीं कुछ अहम पेशरफ्त भी हुई है, मस्तूल जो दरा है वो भी फौज के कंट्रोल में आ गया है, तो हालात जो हैं उसमें बेहतरी क्यों नहीं आ रही है पिशावर में?
मेरे अपने ख्याल ये है कि बेशक इन्होंने बड़ी तादाद में कुछ लोगों को घेर लिया है इराक़ी इलाके में, लेकिन इनके जो दोस्त हैं जो फैसिलिटेटर्स हैं जो इनको इनका सपोर्ट मैकेनिज्म है वो अभी तक मौजूद है, और इसकी मौजूदगी में हमें ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि बहुत जल्द कोई अमन आ जाएगा पिशावर या इसके मज़ाफ़ात में।
ओके, बहुत शुक्रिया अर्शद हारून साहब, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। اور سامعین اس کے ساتھ ہی پروگرام ان دی نیوز کا ٹائم ختم ہوتا ہے. میزبان شہناز نفیس اور پروڈیوسر ویٹو میر کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.